अगली सुबह बंधन के कहे मुताबिक सब लोग जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। वो लोग सुबह के 6 बजे ही देहरादून से कहीं जाने को निकल गए थे। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके बगल वाली सीट पर बंधन बैठी थी। देवेश जी और प्रतिभा जी के साथ आर्या और शिवी पीछे की सीट पर थे। आर्या अपने मोबाइल में बिजी था, तो वहीं शिवी बाहर की तरफ देख रही थी। वो अभी भी गुमसुम थी। अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी देर से सस्पेंस बनाकर रखा है, मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है, प्रतिभा जी ने बंधन से कहा। तुम्हारी मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें ट्रैवल करते हुए 1 घंटे होने को आए हैं, फिर भी तुमने अभी तक जगह का नाम नहीं बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, देवेश जी ने प्रतिभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। चलिए बता देती हूँ, इसी बहाने भाई और भाभी का एक्साइटमेंट तो क्रिएट होगा, कब से दोनों अपने ही कामों में लगे हैं, बंधन ने मुंह बनाकर कहा। उसके कहते ही आर्या ने तुरंत अपना फ़ोन नीचे रख दिया, तो वहीं शिवी ने भी उसकी तरफ देखा। हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, शुरुआत वहीं से होगी, क्योंकि देहरादून में तो हम कभी भी घूम सकते हैं, बंधन ने बताया। चलो इसी बहाने गंगा स्नान करके आ जाएंगे, काफ़ी दिन हो गए वहाँ गए हुए, मुझे लगा तुम मसूर या नैनीताल प्लान करोगे, हरिद्वार जाने के नाम से प्रतिभा जी काफ़ी खुश हो गई थीं। शिवी ने भी मुस्कुराकर बंधन की तरफ देखा और उसे धीरे से थैंक्स कहा। सब कोई उसकी तारीफ कर रहा था, सिवाय आर्या को छोड़कर। बंधन ने मुंह बनाकर आर्या की तरफ देखा, तो उसने कहा, क्या सब लोग तारीफ कर तो रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, सही कहा, इतने लोगों के बीच अगर एक इंसान मेरी तारीफ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी वो इंसान थोड़ा अकड़ू और जलकुकड़ा टाइप का हो तब तो बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, बंधन ने जवाब दिया। इसकी तरफ से मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर देती हूँ, थैंक्स फॉर दिस ट्रिप, शिवी बोली। कुछ सीखिए मेरी भाभी से, शी इज़ टू स्वीट, बंधन ने आर्या को चिढ़ाने के लिए कहा। जवाब में आर्या ने उसकी तरफ मुंह बनाया। कुछ ही देर बाद वो हरिद्वार पहुंच चुके थे। बंधन ने उन सब के रुकने के लिए पास की धर्मशाला में बुकिंग करवा ली थी। उस जगह को देखते ही आर्या ने कहा, तुम्हें रुकने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिली थी क्या? यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ नहीं है, ये सबसे कम्फर्टेबल भी है और पास में भी, बस 2 दिन की ही तो बात है भाई, उसके बाद हम अगला स्टेशन पकड़ लेंगे, बंधन ने कहा। उन सबको उनके रूम में सेटल करने के बाद आर्या अकेले ही घूमने के लिए बाहर चला गया। सुबह का टाइम होने की वजह से गंगा घाट पर भीड़ लगी हुई थी। वहाँ इस मौसम में अक्सर घूमने के लिए काफ़ी पर्यटक आते थे। इस भीड़ में रॉकी साधुओं के टोले के बीच में घूम रहा था। इस महेश के कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गए हैं, कहा था इसे फ़ोन चालू रखना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, रात को भी नहीं मिला था। रॉकी उन साधुओं को गौर से देख रहा था ताकि महेश को पहचान सके। वहीं आर्या भी उसी जगह पर आया हुआ था। घूमते हुए वो किसी साधु से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से साधु के कंधे पर टंगा हुआ झोला नीचे गिर गया। वो नंगे पांव था। आर्या जल्दी से झुका और उसका सामान उठाने लगा। माफ़ कीजिएगा बाबा जी, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं बच्चा, इस भीड़ में अक्सर लोग खो जाते हैं, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाएं, उस साधु ने कहा। आर्या जल्दी जल्दी उसका सामान उठाने लगा। सामान उठाते हुए उसका ध्यान उस साधु के पैर की तरफ गया। उसके राइट पैर की 2 छोटी उंगलियां नहीं थीं। वो खड़ा हुआ और उस साधु को गौर से देखने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सब देखा हुआ सा फील हो रहा है, आर्या ने अपने मन में कहा। वो साधु को उसका सामान देने लगा। आर्या ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से आगे चला गया। आर्या की नज़रें अभी भी उसी साधु पर टिकी थीं। कुछ ही दूर पर वो साधु रॉकी से टकराया। क्या बाबा जी, दिन में भी बूटी लेकर घूमते हो, रॉकी ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा। क्या करे बच्चा, यही हमारे जीवन का परम आनंद है और यही आधार, बोलते हुए साधु ने आँख मारी। रॉकी उसके गले लग गया। साले, तू साधु बनिया अप्सरा, तुझे तो मैं दूर से ही पहचान लूंगा, चल मिलकर बूटी चढ़ाते हैं, महेश बोला और रॉकी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। आर्या दूर खड़ा उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। ये साधु लोग कब से किसी को हक करने लगे, उसकी 2 फिंगर्स नहीं थी, मैंने उसे कहीं तो देखा है, आर्या अपनी सोच में खोया था। वो वापस धर्मशाला आ गया। वो अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था और ये याद करने की कोशिश कर रहा था उसने उस साधु को कहाँ देखा था। अचानक आर्या के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ, हमला याद आ गया। उस रात जब वो अली को मार रहा था, मैंने उसका पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश की थी, तब उसका शूज़ निकल गया था, उसने सॉक्स नहीं पहने थे। उस आदमी के भी 2 उंगलियां कटी हुई थीं, ठीक उसी तरह से जैसे उस साधु के थीं। आई होप ये बस एक कोइंसिडेंट ही हो। आर्या जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और शिवी के कमरे में गया। वो अकेली थी। बंधन ने उसे बाहर जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा था, इसलिए वो तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही हो नंदिनी, उसे तैयार हुआ देख आर्या ने पूछा। ये कैसा सवाल हुआ, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है उसी के लिए ही जाऊँगी ना, तुम भी तैयार हो जाओ वरना बंधन नाराज़ हो जाएगी, शिवी ने उसकी तरफ पलट कर कहा। उसने देखा आर्या कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था। ये रूम अंदर से बंद क्यों कर रहे हो तुम, शिवी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे तुमसे कुछ जानना है, क्या तुम्हारे पापा के राइट पैर के 2 फिंगर्स में ही हैं, आर्या ने तुरंत पूछा। तुम कैसी बातें कर रहे हो और ये किसने कहा तुम्हें, मेरे पापा के हाथ पैर बिल्कुल सलामत हैं और उनकी हर एक उंगली भी, पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहे हो, शिवी ने मुंह बनाकर कहा। उसने आर्या की बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर फिर से तैयार होने लगी। कहीं नंदिनी सही तो नहीं बोल रही, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उसके पापा वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आर्या ने अपने मन में कहा। जब से वो साधु से मिला था उसका मन बेचैन हो गया था। उसने शिवी से ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत वहां से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने सिद्धांत को कॉल किया। सिद्धांत, मुझे तुमसे फेवर चाहिए। वाओ, तुमने मुझे कॉल किया है, तुम शिवी के साथ ही हो ना? वो ठीक तो है? सिद्धांत ने पूछा। वो ठीक ही है, मुझे उसके बारे में नहीं मिस्टर शिवैयर के बारे में बात करनी है। आगे कुछ भी बोलने से पहले आर्या ने इधर उधर देखा। उसके आसपास कुछ लोग मौजूद थे तो वो वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया। तुम जाकर उनसे बात करो, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक नंदिनी सही बोल रही थी, असली क्रिमिनल मिस्टर अय्यर नहीं है। आर्या की बात सुनकर सिद्धांत कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार घूमने आया था और यहाँ गलती से एक साधु से टकरा गया। उस रात जो भी हुआ वो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन इतनी छोटी चीज को मैं भूल जाऊंगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सेल्फ डिफेंस करते टाइम मैंने देखा था उस आदमी के दो फिंगर्स नहीं है। मैंने आज उस साधु को देखा तो उसके भी पैर के दो फिंगर्स नहीं थी। ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक साधु, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? आई एम कन्फ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आर्या ने सिर पकड़ कर कहा।
देखा जाए तो चीजें कोइंसिडेंस ही लग रही हैं, पर कोई भी इत्तेफाक इत्तेफाक से नहीं होता है। वो आदमी साधु ही था इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत से गुंडे मवाली लोग छुपने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, सिद्धांत ने सीरियस टोन में कहा। हाँ, मुझे भी वो थोड़ा वियर्ड लगा। आगे जाकर फिर वो एक आदमी से टकरा गया और उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका क्लासमेट हो। उन दोनों ने हक किया, तब तो दाल में जरूर काला है। ऐसा करो, उस आदमी का पीछा करो। कुछ भी करने से पहले खुद की और शिवी की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, तुम दोनों को वहां खतरा हो सकता है, सिद्धांत ने उसे वार्न किया। मुझे नहीं लगता इतनी भीड़ में मैं उसे वापस ढूंढ पाऊंगा। मैं मिस्टर अय्यर से मिलना चाहता हूँ और आज ही मुंबई आ रहा हूँ। अब जो भी बातें होंगी वो आमने सामने होगी और उन्हें सच बताना होगा, कहकर आर्य ने कॉल कट कर दिया। वो तुरंत वहां से बंधन के पास गया। वहां उसके मामा मामी और शिवी भी मौजूद थे, वो घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, मुझे आपको बुलाने नहीं जाना पड़ा, उसे देखते ही बंधन बोली। लिसन, मुझे किसी काम से वापस जाना होगा और तुम में से भी कोई यहाँ नहीं रुकेगा। आप सब लोग अभी के अभी देहरादून जा रहे हैं एंड मेरी एब्सेंस में बंधन तुम नंदिनी का ख्याल रखना, आर्य ने हड़बड़ाहट में कहा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? तुमने कहा था हम दोनों वापस साथ में चलेंगे, शिवी ने घबरा कर कहा। हे, तुम परेशान मत हो, और परेशान होने जैसा कुछ है भी नहीं। मिस्टर शुक्ला का कॉल आया था, उन्हें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। प्रॉमिस करो मेरी एब्सेंस में तुम अपना ध्यान रखोगी, बोलते हुए आर्य ने अपने दोनों हाथों से शिवी का चेहरा पकड़ लिया। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं उन दोनों को इतना खुश देखकर बंधन ने प्रतिभाजी से धीमी आवाज में कहा, मामी, जब भी मुझे डाउट होता है इनके बीच कुछ गड़बड़ है, ये बिना कुछ पूछे सब क्लियर कर देते हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था सब ठीक है, प्रतिभाजी बोली। उनको जरूरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद आर्य वहां से चला गया। हालांकि उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसके हाव भाव देखकर शिवी समझ गई थी जरूर कुछ गड़बड़ है। आर्य अपने साथ जो भी लगेज लाया था वो लेकर वापस मुंबई जाने के लिए निकल गया। जैसा कि सिद्धांत ने नंदिनी को शिव से मिलवाने का वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए वो सेल के आगे खड़ा था और नंदिनी के आने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में नंदिनी अपनी कार में वहां पहुंची। उसने स्कार्फ से अपना चेहरा कवर कर रखा था। जल्दी चलिए, आपने वैसे ही काफी टाइम लगा दिया, उसके पास आते ही सिद्धांत ने कहा। वो दोनों अंदर गए और जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उन्हें शिव से मिलने के लिए भेज दिया गया। नंदिनी उससे अकेले में मिलना चाहती थी, इसलिए सिद्धांत बाहर ही खड़ा था। जैसे ही शिव और नंदिनी का आमना सामना हुआ, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नंदिनी की आंखें नम हो रही थीं, इसलिए जल्दी से उसने अपना चेहरा घुमा लिया। तुम बहुत बदल गए हो, नंदिनी ने वापस से शिव की तरफ देखकर कहा। लेकिन तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, उतनी ही खूबसूरत। शायद तुम्हारी इसी खूबसूरती ने जिम वॉटसन का दिल जीत लिया होगा। शिवी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लगने लगी है, शिव ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया, जैसे कोई दोस्त अपने पुराने दोस्त से मिलने पर करता हो। वो दोनों वहां बैठ गए। नंदिनी ने उसकी बात के जवाब में कहा, आई विश कि शिवी सच में बिल्कुल मेरी तरह होती। भले ही उसने शक्ल मेरी पाई हो, लेकिन उसका दिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तब तो जिंदगी भर धोखे ही खाती रहेगी मेरी बेटी। दुआ करूंगा कि जल्द ही उसे भी सही गलत की पहचान हो जाए, शिव ने तंज कसा। उसे तो सही गलत की पहचान हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या? वो बच्ची है, उसकी उम्र पड़ी है, लेकिन तुमने तो अपनी ज्यादातर जिंदगी जी ली है शिव। हमारी जिंदगी के ज्यादा साल नहीं रहे हैं, लेकिन शिवी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्यों तुम उसे बर्बाद करने पर तुले हो? हमेशा की तरह नंदिनी के शब्द गुस्से में कड़वे हो रहे थे। मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, आज भी गुस्से में कुछ भी बोल देती हो, शिव ने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम चाहे जो समझ लो,
लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने आई हूँ। सच बता दो या उससे कहो कि तुमसे दूर रहे। तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया, मुझे जानना भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम्हें जो करना है करो, पर शिवी की जिंदगी से मत खेलो। अब तक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा, तुमने उस राज जिसे मारने की कोशिश की, वो शिवी का होने वाला पति है। तुम्हारी वजह से उसका रिश्ता खतरे में है। मैं उससे बहुत प्यार करती है शिव, अपने लिए ना सही अपनी बेटी के लिए सच बता दो। बोलते हुए नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर शिव के कदमों में आ गई थी। शिव ने उसे उठाया। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम शिवी के लिए मेरे कदमों में हो। मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूँ, मैंने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की पर वो मान ही नहीं रही। तो तुम मान जाओ और सच बता दो, नंदिनी ने कहा। नंदिनी और शिवी के आगे शिवैयर की हिम्मत टूट रही थी। अगर वो सच बता देता तो सबसे पहले उन दोनों की जान को खतरा था, लेकिन नहीं बताते तो शिवी जिंदा रहकर भी खुश नहीं रह पाती। वो असमंजस की स्थिति में वहां खड़े थे।